एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्था के लिए महासागर किस तरह महत्वपूर्ण है?
एशिया प्रशांत के लिए महासागर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप देखें कि 80% जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हमारी मतलब एक लाइफलाइन होती है, वो ओशंस या महासागर से आती है। और ये महासागर हमारे एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। ये हमारे एक इम्पोर्टेंट फूड या खाने का या भोजन का हिस्सा है। अब जैसे 16% जो 16% जो प्रोटीन का सोर्स फिशरीज है, फिशरीज आप जानते हैं कि महासागर से निकलती हैं। 45 मिलियन या 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली, जैसे उनकी रोजी रोटी वो महासागर से जुड़ी है। और 3.5 बिलियन लोग, मतलब नियरली 40% जो है वो इन महासागरों से जुड़ा है। इन द सेंस के ऐसे गांव, कस्बे या शहरों में रहते हैं जो महासागरों के 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। और ये महासागर के द्वारा हमारे रीजन का, एशिया प्रशांत रीजन का ट्रेड जो है, ये व्यापार जो है वो पूरा होता है। 80% जो हमारा व्यापार है वो महासागर के थ्रू जाता है।
महासागरों पर जो UNSCAP की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या प्रमुख तत्व निकल कर सामने आए हैं?
उसमें खास तौर से एक सस्टेनेबल ओशंस के ऊपर जो एक SDG का भी गोल 14 है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है। और उसमें 4 मेजर बातें हैं। एक तो शिपिंग को ग्रीनिंग करने का, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा 80% जो व्यापार है वो शिपिंग के थ्रू होता है। तो ग्रीन बनाने का मतलब है कि उसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, उसको और साइंस बेस किया जा सकता है। और उसमें जो कुछ देशों को अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात उसमें कही गई है जो मछली पालन का काम, जिसके ऊपर 4.5 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसको एक सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है। और इसमें कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि जैसे अनसस्टेनेबल फिशिंग, जिसे हम कहते हैं ओवर फिशिंग, या जिस मतलब जो ठीक से नहीं करी जाती है, उसका प्रतिशत 1974 में 10% था, अब वो 33% हो गया है। तो मतलब 3 गुने से भी ज्यादा वो अनसस्टेनेबल फिशिंग की प्रपोर्शन हो गई है। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी बात उसमें कही गई है कि ये ओशंस हमारे जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम उन ओशंस को कुछ इतनी बुरी तरह से प्लास्टिक यूज से पोल्यूट कर रहे हैं कि जो एक आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। इसका एक्चुअली एक चैप्टर का, एक सेक्शन का टाइटल दिया गया, ओशन ऑफ प्लास्टिक। तो इतने सारे प्लास्टिक के उसमें बैग कर, उद्योग के द्वारा, नालों के द्वारा बह कर सारे वो समुद्र में इकट्ठे हो जा रहे हैं, जिससे वो उनका वातावरण, उनका एनवायरमेंट सब खराब हो रहा है। और उसके लिए प्लास्टिक फ्री इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना होगा। तो ऐसी ऐसी कई चीजें हमें करनी होगी जिससे जो प्लास्टिक पोल्यूशन उनको, समुद्रों को, महासागरों को का विनाश कर रहा है, उनके एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, उसको ठीक किया जा सके। और चौथी बात उसमें कही गई है कि ये जो गोल 14 है, SDG गोल 14 है, उसमें 10 टारगेट्स है। 10 में से सिर्फ 2 टारगेट्स के लिए डाटा अवेलेबल है। तो हमें अभी बहुत बड़े एक डाटा गैप का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम एक अच्छे जो असेसमेंट के लिए जो हमें डाटा चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए प्रभावित देश हैं वो मिल के काम करें और उसको जो नए इंडिकेटर्स हैं उनका मानदंड या उनका डाटा इकट्ठा करें, जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दिशा निर्धारण में कुछ उसका लाभ होगा।
तो इस रिपोर्ट में महामारी के संकट को अवसर में बदलने का भी पर भी जोर दिया गया है, इसके क्या मायने हैं?
इस महामारी से जैसे हम जूझ रहे हैं, उससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को काफी नेगलेक्ट करते हैं तो उसकी हमें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये एक मौका है कि जब हम अपने एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी पार्ट को ध्यान दें। और तो अभी कोविड के लिए सारी सरकारें मिलके इतने बड़े पैकेज या स्टिमुलस पैकेज की बात कर रही है, उसमें लाखों करोड़ों के खर्च होंगे। तो उस खर्च को अगर हम कुछ हिस्सा उसका जो महासागर के लिए भी अगर सस्टेनेबल फिशरी जैसे है उसके ऊपर खर्च करें, और जो पोल्यूशन का कचरा जो वहां पे प्लास्टिक का इकट्ठा हो गया है उसको सफाई करने में भी खर्च करें, तो इसके बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। एक दूसरी चीज सामने आई है कि अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से सारा यातायात रुक गया है कोई एसेंशियल कम्युनिटीज के अलावा, तो उससे हम चारों तरफ देख रहे हैं कि जो वायु और पर्यावरण वो सुधरा है, नदियों का पानी है वो भी अब साफ हो गया है, और एयर क्वालिटी जैसे नई दिल्ली या दिल्ली की एयर क्वालिटी भी काफी इम्प्रूव हुई है, जो यहाँ की मेन समस्या होती थी उसका फर्क महासागरों पर भी पड़ा है कि अब अगर साफ पानी नदियों से जाएगा तो उसकी उसमें जो प्लास्टिक और कचरा जो जाता था वो भी जाना बंद हुआ है। तो उसका असर तो दिखा है, लेकिन ये हमें लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो जो अभी थोड़े समय के लिए जो अच्छे परिणाम दिखाई दिए हैं उसे हमें लॉन्ग टर्म में बनाना होगा।
जैसा कि आपने कहा कि अभी थोड़े समय के लिए अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, तो कोविड संकट खत्म होने पर महासागरों के जरिए जीवन यापन के सतत तरीके अपनाने के रास्ते में क्या बड़ी चुनौतियां सामने दिख रही हैं आपको?
जो इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है वो पोल्यूशन, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन पर, प्लास्टिक का और कचरे का जो समुद्र में जाता है उसको हमें कम करना होगा, रोकना होगा। उसके लिए सस्टेनेबल कंजम्पशन हमें अपनाएं, जो प्लास्टिक बैन जो सरकारें लगा रही हैं उसको सख्ती से पालन करें।
तो इस सब में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका रहती है? SDG 14 यानी लाइफ अंडर वाटर का लक्ष्य हासिल करने के लिए UN विभिन्न सरकारों के साथ मिलकर किस तरह के कदम उठा रहा है?
यूनाइटेड नेशंस अपने जो 2030 एजेंडा है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके तहत सारे मेंबर कंट्रीज या सदस्य देशों को मिलके प्रोत्साहित कर रहा है कि ये जो हमने 2030 एजेंडा 2015 में एक समिट में एग्री किया था उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव करें। और उसमें गोल 14 जो लाइफ अंडर वाटर वो सारा का सारा समुद्रों से लिंक है, तो उसके लिए एक तो हम समस्या जो है उसका पहले अध्ययन करें, उनका विश्लेषण करें, और यूनाइटेड नेशंस इस बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है मेंबर स्टेट्स को कि जो समस्या है उसका निदान हमें सबको बैठकर एक साथ इकट्ठे होकर निकालना होता है।